मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार फ्रेंड्स, 25 फरवरी की सुबह जैसे ही मैंने दैनिक भास्कर अखबार उठाया और उसके पहले ही पेज पर नजर पड़ी और उसमें मैंने पढ़ा यह उनका आखिरी कॉलम है, वैसे ही सच पूछिए तो भास्कर के जितने भी अक्षर थे मेरे सामने नाचने से लगे। पढ़ना मुश्किल हो गया और ऐसा मालूम पड़ा मानो कि अखबार का जो रंग है वह बदरंग हो गया हो, यानी कि कल से जब मैं अखबार पढ़ूंगा तो अखबार के जो अलग अलग रंग मुझे दिखाई देते थे, उसमें जो छटाएं होती थी और उसका जो एक अलग तरह का स्वाद होता था, हमेशा हमेशा के लिए मैं वंचित हो जाऊंगा। और आज उसके लगभग 5 दिन बाद जो मुझे सूचना मिली सुबह सुबह अपने बेटे सानिध्य के जरिए, तो मैं भौचक्का रह गया। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अखबार ही बदरंग नहीं हो गया है मेरे लिए, बल्कि सच पूछिए तो कहीं न कहीं दुनिया भी थोड़ी सी उदास और थोड़ी सी बदरंग सी हो गई है। मेरे लिए इसके जो चटक रंग होते थे धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि वे गायब से होते चले जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी तस्वीरें जो जीवन के एल्बम में शामिल थीं, वहां से हट करके स्मृतियों के दीवार पर टंगती जा रही हैं। जी हां, आज सुबह सूचना मिली कि जयप्रकाश चौक से जी नहीं रहे, जो दैनिक भास्कर पिछले 26 सालों से पढ़ते रहे हैं। मैं 26 सालों की बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि 26 सालों तक लगातार वो दैनिक भास्कर में कॉलम लिखते रहे हैं और वो कॉलम भी डेली कॉलम है, ऐसा नहीं कि वो सप्ताह में एक दिन का कॉलम हो। 26 साल तक लगातार, और सोच करके देखिए जब उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली उस समय उनकी उम्र थी 83 वर्ष। दोस्तों सच पूछिए तो जब वो कॉलम लिखते थे और जब मैं उन्हें पढ़ता था तो मुझे आश्चर्य होता था, कई बातों पर आश्चर्य होता था। उनकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि जिस तरीके से वो फिल्मों के रेफरेंसेस देते थे, घटनाओं का उल्लेख करते थे, और उल्लेख ही नहीं करते थे बल्कि दृश्यावलियां प्रस्तुत करते थे, तो मैं भौचक रह जाता था। अरे बाप रे, किसी की स्मरण शक्ति सच में इतनी शानदार हो सकती है, इतनी जानदार हो सकती है, इतनी फोटोग्राफिक हो सकती है? 26 सालों तक उन स्मृतियों को लगातार कागजों पर उतारना कोई आसान बात नहीं है। और खासकर इस बात का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले लगभग 6 सालों से वे लंग्स कैंसर से पीड़ित थे, और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह कहा जाता है कि लंग्स कैंसर के जो पेशेंट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल तक। और 6 साल तक जयप्रकाश चौकसे जी उससे लड़ते रहे, सर्वाइव उन्होंने किया, लेकिन कॉलम चलता रहा। और यहां तक कि अभी पिछले बहुत समय से वे बिल्कुल बिस्तर पर आ गए थे। उनके बेटे हैं राजू चौकसे जी, 2 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि वो अभी मॉर्फिन पर चल रहे थे लेकिन लिखना उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई फिर वो लिखते कैसे थे, तो उन्होंने कहा कि सामान्यतया तो मॉर्फिन के प्रभाव में वे रहते थे, जिसका प्रभाव 4 घंटे तक रहता है अगर एक डोज दी जाए। लेकिन उन्होंने बताया कि सुबह हम उन्हें 2 डोज मिस कर देते थे, नहीं देते थे, और उसमें उनकी चेतना थोड़ी सी वापस आती थी। हम सब उन्हें बिठाते थे, सपोर्ट करते थे, और फिर वे हाथ से लिखते थे। दोस्तों ये समझने की बात है, हाथ से लिखते थे। और उन्होंने जो अंतिम लेख लिखा जिसमें उन्होंने अपने कॉलम के समाप्ति की घोषणा की थी, वह हस्तलिपि प्रति मेरे पास है, जो मेरे अंतिम सांस तक मेरे पास उनकी स्मृति के रूप में सुरक्षित रहेगी। वो हाथ से लिखते थे। और आप एक विचित्र सी स्थिति देखिए दोस्तों कि उन्होंने 25 फरवरी को अपना अंतिम कॉलम लिखा और 2 मार्च को उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली, यानी कि केवल 5 दिन ही वो बिना लिखे रह सके। इसका मतलब है कि लिखना उनके लिए जीवन का हिस्सा बन गया था, मानसिक श्वास के रूप में वह तब्दील हो चुका था कि लिखना है तो जीना है और जीने का मतलब ही मेरे लिए लिखना है। यहां तक कि उनकी मल्टीपल सर्जरी हो चुकी थी और राजू चौकसे जी ने बताया कि जिस दिन उनकी सर्जरी हुई थी, हार्ट अटैक की सर्जरी हुई थी उनकी, बकायदे उस दिन संडे का दिन था। उस समय जबकि यह बात है, आर्टिकल लिख करके फैक्स कर दिया जाता था, तो संडे को ही उन्होंने बकायदे अपना आर्टिकल सर्जरी से पहले मंडे वाला फैक्स कर दिया कि वो मंडे को छप जाएगा, और ट्यूसडे का आर्टिकल फिर उन्होंने मंडे दोपहर में, सोमवार की दोपहर में लिखा और उसे फैक्स किया। इसका मतलब है कि जब उनके हार्ट की सर्जरी हुई तब भी उनके लिखने में कोई ताकत व्यवधान नहीं डाल सकी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आखिर में उनको इतनी ऊर्जा मिलती कहां से होगी, कहां से वो ऊर्जा लाते होंगे। अद्भुत स्मरण शक्ति थी, मैंने आपको बताया, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे उसमें नए नए बिंब योजनाएं लेकर के आते थे, और शब्दों को जिस तरीके से वे अपनी लेखनी में पिरोते थे, आश्चर्य होता था कि ये सब बातें उनके दिमाग में आती कहां से हैं। और उससे भी जो बड़ी बात मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगती थी वो ये कि वे लिखते 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 सिनेमा पर थे, लेकिन लिखते लिखते ऐसी गजब की बातें कह जाते थे जिसमें जीवन की बहुत ही गहरी फिलॉसफी दिखाई देती थी, झलकती थी, और वो गहरे तक उतर भी जाती थी। इसलिए फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जो लेख लिखते हैं इन्हें किताबों के रूप में लेकर के आए। उन्होंने कहा कि कौन पढ़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, इसमें जीवन की गहराइयां हैं, लोग पढ़ेंगे। बोले नहीं, कौन छापेगा। मैंने कहा कि नहीं, हम छापेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, छापोगे तो तुम, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे लेख हैं, मैं क्या करूं। मैं कहा कुछ नहीं, आप तो यह है कि मुझे अपने लेखों का सुमेरु पर्वत सौंप दीजिए, उसमें से संजीवनी बूटी मैं निकाल लूंगा। दोस्तों, उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने अपने लेख मुझे सौंपे, उस पर मैंने काम किया, और अंततः वह किताब हमारे यहां से छप करके आई बेंटेन बुक्स से, सिनेमा जीवन की पाठशाला के नाम पर, और पाठकों ने इस पुस्तक को काफी सराहा भी। दोस्तों, जयप्रकाश चौकसे जी ने राज कपूर जी पर, राज कपूर जी के बड़े निकट के परिचित रहे हैं, जो एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी, छोटी सी किताब है वो, उसे जब मैंने पढ़ा था तो मेरे लिए सच में वो सिनेमा की पाठशाला बन गई थी। पढ़ करके मैं आश्चर्यचकित रह गया कि सिनेमा को इतने स्तरों पर और इतने डिफरेंट डिफरेंट कोणों से देखा जा सकता है, सिनेमा को इस तरीके से समझा जा सकता है। जो व्यक्ति सिनेमा बनाता है वो इस तरह के गहरे जद्दोजहद से गुजरता है, इतने द्वंद्वों को बर्दाश्त करता है, और सिनेमा देखने की यह दृष्टि होती है। इनफैक्ट इससे पहले मैं भी लगातार 10 साल तक दैनिक जागरण में कॉलम लिखता रहा सिनेमा पर, हालांकि वो मेरा साप्ताहिक कॉलम होता था, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद सिनेमा पर लिखने की मेरी पूरी की पूरी दृष्टि ही बदल गई। एक छोटी सी किताब किसी के ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाल सके, अपने आप में सच पूछे तो बहुत बड़ी बात है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका स्नेह मिला, ये मेरा सौभाग्य है कि अनजाने में ही सही लेकिन मुझे उनका निर्देश मिला। दोस्तों, अब ऐसी शख्सियत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जब इस तरह के व्यक्ति जाते हैं तो ये केवल घर वालों की ही कमी नहीं होती है, ये समाज की कमी होती है, ये राष्ट्र की कमी होती है। और आज मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस कर रहा हूं जैसे कि घर वाले महसूस कर रहे होंगे, और एक नागरिक के तौर पर महसूस कर रहा हूं उनकी कमी को जैसे कि कोई देश कोई समाज महसूस करता है। तो फ्रेंड्स, अपने इन्हीं थोड़े से विनम्र शब्दों के साथ मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से, बेटे सानिध्य अग्रवाल और बहू पूजा अग्रवाल की ओर से उनकी स्मृति को बहुत बहुत विनम्र और पवित्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और परिवार के सदस्यों को वह शक्ति दें कि वे इस दुख को बर्दाश्त कर सकें। फ्रेंड्स, अब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।